राजवीर जी ने जाह्नवी के साथ उन सभी जगहों पर गए जहां पर आकांक्षा जा सकती थी, लेकिन उन्हें हर तरफ निराशा ही हाथ लगी। सुबह से दोपहर का वक्त हो गया था, उसके बावजूद आकांक्षा का कुछ पता नहीं चला। आखिर में राजवीर जी को पुलिस स्टेशन आना ही पड़ा। वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इंस्पेक्टर दुबे वहीं मौजूद थे। जाह्नवी को देखते ही इंस्पेक्टर दुबे उसके पास जाकर बोले, अरे जाह्नवी, तू फिर आ गई यहाँ पर? दीदी और जीजा जी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तू आए दिन पुलिस स्टेशन में आ जाए। और आज तेरी दोस्त नहीं आई तेरे साथ? उनकी बात सुनकर राजवीर जी ने हैरानी से पूछा, आप जानते हो जाह्नवी को? और कौन सी दोस्त की बात कर रहे हो? अरे जाह्नवी के साथ रहती है ना वो है ना जो चश्मा लगा कर रखती है, भूरे बालों वाली गोरी सी लड़की। पता नहीं इन दोनों के दिमाग में पूरे दिन क्या खुराफात चलती रहती है, ये आजकल के बच्चे भी ना। इंस्पेक्टर दुबे के कहते ही राजवीर जी ने जाह्नवी को गुस्से में घूर कर देखा। जाह्नवी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तू और अक्षु पहले भी यहाँ पर आई थी, लेकिन बेटा पुलिस स्टेशन में किस लिए? इंस्पेक्टर दुबे, अरे मत पूछिए सर, यहाँ 3-4 दिन पहले एक लड़के का मर्डर हो गया था, जंगल के छोर पर उसकी लाश मिली थी और उसकी लाश के पास कुछ किताबें, दोनों लड़कियों ने जबरदस्ती वो किताबें मुझसे पढ़ने के लिए ली थीं। पता नहीं आजकल के बच्चे क्यों भूत पिशाच के बारे में स्टडी करते रहते हैं। लगता है दुबे अंकल सारी पोल आज ही खोल देंगे, यक्षु की बच्ची पता नहीं खुद तो कहाँ चली गई और मुझे यहाँ अकेली छोड़ गई, जाह्नवी बड़बड़ाई। इंस्पेक्टर साहब, जाह्नवी के साथ जो लड़की आती है वो मेरी पोती है, आकांक्षा ठाकुर, पता नहीं सुबह से कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही, उसी की कंप्लेंट लिखवाने आए थे। राजवीर जी भावुक होकर बोले, बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन ये आजकल के बच्चे हम बड़ों की सुनते कहाँ हैं, ये लोग भूत पिशाच वाली किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, फिर उन्हें खोजने निकल जाते हैं। देखिए, हम आपकी रिपोर्ट 24 घंटे से पहले नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी मैं जाह्नवी को जानता हूँ तो आपके साथ एक कांस्टेबल को भेज देता हूँ, वो उसकी फ़ोटो लेकर इधर उधर पूछ लेगा, इंस्पेक्टर ने कहा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं जाह्नवी से आपको कॉल करने को बोल दूंगा, कहकर राजवीर जी जाह्नवी के साथ बाहर आ गए। वो जाह्नवी की तरफ गुस्से में देख रहे थे। दत्तू, अब आप ऐसे लुक्स तो मत दीजिए, मुझे डर लग रहा है, जाह्नवी ने मुंह बनाकर बोला। जाह्नवी, तू सच सच बताएगी कि इन 2-3 दिनों में चल क्या रहा है? कभी तुम दोनों को आधी रात को लाइब्रेरी जाना होता है तो कभी तुम दोनों पुलिस स्टेशन चली जाती हो। दत्तू, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमारी अक्षु के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, जाह्नवी ने इधर उधर देखकर धीमी आवाज में कहा। राजवीर जी जाह्नवी के मुंह से मैजिकल पावर्स की बात सुनकर चौंक गए, उन्होंने बात को ज्यादा बढ़ाना जरूरी नहीं समझा। क्या बोल रही हो तुम जाह्नवी, हम घर पर नहीं हैं, तुम्हारी हरकतें तो पागलों वाली हैं ही, अब बातें भी पागलों जैसी करने लगी। ठीक है दद्दू, हम घर पर चलकर बात करते हैं, अब आपने मुझे पागल बोल दिया है तो ये पागल आज आपको सारा सच बता देगी, लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि जब अक्षु मुझे मारेगी तब आप मुझे बचाएंगे उससे। राजवीर जी का पागल बोलना जाह्नवी को पसंद नहीं आया। घर चलकर बात करते हैं, कहकर राजवीर जी गाड़ी की तरफ बढ़े। कुछ देर बाद राजवीर जी और जाह्नवी घर वापस पहुंचे। वो जाह्नवी से थोड़ा गुस्सा थे। अब सब कुछ सच सच बताओगी, मुझे कोई झूठ नहीं सुनना जाह्नवी। एक ग्लास पानी मिलेगा? जाह्नवी ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। नहीं मिलेगा, कहीं मैं पानी लेने गया और तुमने कोई नया बहाना सोच लिया तो? पहले सब कुछ सच सच बता दो, पानी क्या जूस बनाकर पिलाऊंगा। ओके, जाह्नवी एक सांस में जल्दी जल्दी सब बोलने लगी। याद है आपको 2-3 दिन पहले अक्षु मेरे घर पर आ रही थी, दुबे अंकल ने बताया उस लड़की की लाश रास्ते में पड़ी थी, अक्षु जब भी किसी को छूती है तो उसे उसका पास्ट दिखने लगता है, तो उस लड़के को भी अक्षु ने गलती से छू लिया था, तो उसे पता चला कि उस लड़के को किसी पिशाच ने मारा है। बोल तो ऐसे रही हो जैसे वो पिशाच तुम्हारा रिश्तेदार हो, इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि उस लड़के को किसी पिशाच ने मारा है, राजवीर ने उसकी बात काटकर बोला। मुझे पता था कि आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन दद्दू, हम दोनों ने कुछ बुक्स पढ़ी और थोड़ी बहुत सर्च की थी, हो सकता है कि वो जंगल में रहने वाला पिशाच एमरोकियो हो या फिर राजकुमार रिवांश, पर कुछ भी कहो दद्दू, अक्षु के पास मैजिकल पावर तो है, चाहे आप मेरी बात मानो या, राजवीर जी ने फिर उसकी बात के बीच में बोले, मुझे सब पता है जाह्नवी कि अक्षु के पास कुछ शक्तियां हैं, आज से नहीं बल्कि बचपन से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसकी शक्तियां जागृत हैं। राजवीर के मुंह से सच सुनकर जाह्नवी हैरान हो गई, उसने आंखें बड़ी करके बोला, तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताया, ये आपकी बहुत गलत बात है दद्दू, अक्षु मेरी सिर्फ 2 महीने पुरानी फ्रेंड है, फिर भी मुझसे कुछ नहीं छुपाती है, आप अक्षु को बचपन से जानते हो और इतनी बड़ी बात आपने उससे छुपाई। मैंने सब कुछ अक्षु की भलाई के लिए ही किया था, मैं नहीं चाहता था कि वो इन पावर्स की वजह से किसी मुसीबत में आए, जाह्नवी हमें इसके लिए वापस राजपुरोहित जी से मिलना होगा, राजवीर जी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। अब ये राजपुरोहित जी कौन हो गए, कोई न्यू एंट्री है क्या? राजवीर जी, कांगड़ा में जो माता रानी का मंदिर है वो उसी में रहते हैं, राजपुरोहित जी को ही सबसे पहले आकांक्षा की शक्तियों के बारे में पता चला था, हो सकता है इसका हल भी उन्हीं के पास हो, हमें उनके पास जाने में देर नहीं करनी चाहिए। और पीछे से अक्षु घर पर आई तो?
अगर आकांक्षा को घर पर आना होता तो वो आ चुकी होती। वो मुझे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती। लगता है वो वक्त करीब आ गया है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। ये तो आपका भ्रम ही है कि आपको बिना बताए कहीं नहीं जाती आपकी अक्षु, जाह्नवी धीरे से फुसफुसाई। और वो कहीं जाती भी है तो इतनी देर में वापस भी आ जाती है। जरूर वो किसी मुसीबत में है। तुम चलोगी मेरे साथ? राजवीर ने पूछा तो जाह्नवी ने झट से हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तुम थोड़ा खाने पीने का सामान पैक कर लो, मैं तब तक कुछ और जरूरी चीजें देख लेता हूँ। राजवीर जी के दिए निर्देशों के हिसाब से जाह्नवी ने सब कुछ तैयार कर लिया और कुछ देर बाद वो दोनों कांगड़ा के मंदिर के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ जंगल में आकांक्षा रिवांश के साथ वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। उन दोनों को चलते हुए काफी वक्त हो गया, लेकिन जंगल तो मानो किसी भूल भुलैया की तरह हो गया था। वो दोनों जहां से शुरू करते घूम फिर कर वापस वहीं पहुंच जाते। आकांक्षा चलते चलते बहुत थक गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। रिवांश भी उसके साथ वहीं पास में बैठ गया। हम दोनों कितनी देर से चले जा रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब तक सुबह ना हुई हो। फिर यहाँ पर सूरज की रोशनी क्यों नहीं आ रही? आकांक्षा ने हांफते हुए पूछा। यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती, रिवांश ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ के पेड़ कितने घने हैं और इनमें से कई पेड़ 100 साल से भी पुराने हैं। इस वजह से यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती होगी। रिवांश के कहते ही आकांक्षा का ध्यान ऊपर की तरफ गया, जहाँ वाकई पेड़ काफी घने थे। उनमें से कुछ पेड़ों पर फलों को देखकर आकांक्षा ने खुश होकर कहा, थैंक गॉड कुछ तो खाने को मिला, वरना मेरे पेट में तो चूहे कब से हिप हॉप करे जा रहे थे। बहुत भूख लगी है।
आकांक्षा फलों को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने जा ही रही थी कि रिवांश ने उसे रोकने के लिए उसका पैर पकड़कर खींचा। वो नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन रिवांश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। भले ही जंगल में बहुत अंधेरा था, लेकिन आकांक्षा रिवांश के इतने करीब थी कि उसने पहली बार आकांक्षा को इतने करीब से देखा और महसूस किया। अचानक ऊपर से नीचे आने की वजह से आकांक्षा की आंखें डर के मारे बंद हो गई थीं। ये क्या कर रही हैं आप? जानती नहीं कि जंगल के पेड़ और फल दोनों जंगली हो सकते हैं? आप उनको खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी, आपकी जान भी जा सकती है, रिवांश ने उसे डांटा। आकांक्षा खुद रिवांश की बाहों में सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसने धीरे से आंखें खोली। अंधेरा होने के बावजूद उसकी नज़र रिवांश की आंखों पर गई। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, मैंने कभी इतनी खूबसूरत आंखें किसी की नहीं देखी। हमने भी आपसे खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी, आप बिल्कुल किसी शहजादी की जैसी हैं, क्या हम आपको शहजादी बुला सकते हैं? आकांक्षा ने हंसते हुए जवाब दिया। चलो कोई तो मिला शहजादी बुलाने वाला, वरना घर के काम करते करते नौकरानी वाली फील आने लगी थी, अब छोड़ो भी मुझे। आकांक्षा की बातें सुनकर रिवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसे कुछ कहता उससे पहले जंगल में रघु, विजय, संजय और रवि के चिल्लाने का भयंकर स्वर गुंजा, जिसकी गर्जना से जंगल के पेड़ों की जड़ें पखिल गईं। क्रमशः